दिन भर तारीख 6 अप्रैल दिन बुधवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। श्रीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तिरंगा फहराने को लेकर पुलिस लाठीचार्ज के बाद इंस्टीट्यूट में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन शांति बनी हुई है। मानव संसाधन मंत्रालय के दो अधिकारी वहां पहुंचे।
कश्मीरी लोगों में से बहुत सारे, लेकिन हाईलाइट सिर्फ बाहर के लड़कों का हुआ क्योंकि उनके पास नेशनल मीडिया का सपोर्ट भी है एंड इस टाइम गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। प्लस जो ये तिरंगा लहराना या यहाँ पे मंदिर का बनना वो तो बकवास डिमांड था।
दुनिया में 22 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित, जिनमें 10 करोड़ सिर्फ भारत में। बात म्यांमार की, जहां लोकतंत्र के रास्ते में बाधा बन रही है आंग सान सूची और सेना की रस्साकशी।
25% सीटें मिलिट्री के पास है, तो उनसे लड़ के कुछ भी हासिल नहीं होगा, आपको उनके साथ कहीं ना कहीं मिल करके बैठ करके बात करनी।
कार्यक्रम में खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अजय शर्मा से। भारत प्रशासित कश्मीर के श्रीनगर में मौजूद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हालात शांत हैं पर तनाव बना हुआ है। जम्मू में आज वकीलों ने हड़ताल की जिससे अदालतों में कामकाज नहीं हुआ। कल श्रीराम सेना ने जम्मू में बंद का आह्वान किया है। आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दो अफसरों ने कैंपस का दौरा भी किया। T20 में भारत की हार के दौरान कुछ छात्रों के तिरंगा फहराने के बाद यहाँ छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए थे। पनामा पेपर्स लीक होने के बाद फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो पनामा को फिर से ब्लैकलिस्ट में रखेगा। फ्रांसीसी विदेश मंत्री मिशेल सापिन ने संसद को बताया कि पनामा को इन खुलासों के नतीजे भुगतने पड़े हैं। पनामा एक ऐसा देश है जो हमें यकीन दिलाना चाहता था कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन कर सकता है। इस तरह वो कर मुक्त देशों की ब्लैकलिस्ट से खुद को हटाने में कामयाब रहा, मगर अब ये आगे नहीं चल सकता और फ्रांस ने पनामा को फिर से उन देशों की सूची में रखने का फैसला किया है जो असहयोग कर रहे हैं और उन्हें वो तमाम नतीजे भुगतने होंगे जो उन देशों पर लागू होंगे जो पनामा से लेन देन करते हैं। ये थे फ्रांस के वित्त मंत्री मिशेल सापिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। शरणार्थी संकट को देखते हुए यूरोपियन यूनियन आप्रवासन के नियमों में सुधार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यूरोपियन कमिश्नर फ्रांस टिमरमैंस ने कहा कि मौजूदा नियम सही नहीं थे और उन्हें लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता। उनका कहना है कि यूरोपियन यूनियन के देशों को शरणार्थियों के सही ढंग से पुनर्वास के लिए दो अलग अलग विकल्पों पर विचार करना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया में डायबिटीज़ रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है और इससे दुनिया का हर 11 में से एक व्यक्ति प्रभावित है। संगठन के मुताबिक 2014 में ऐसे 42 करोड़ मामले थे जो 1980 के मुकाबले 4 गुना हैं। पूर्व यूगोस्लाविया में युद्ध अपराधों की सुनवाई कर रहे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक ट्रिब्यूनल के अभियोजक का कहना है कि वो सर्बियाई उग्र राष्ट्रवादी वोजिस्लाव सेजेल्स की रिहाई के खिलाफ अपील करेंगे। सेजेल्स को पिछले हफ्ते छोड़ा गया था। अभियोजक सर्ज ब्रामर्स ने कहा कि उनकी टीम को जजों के फैसले में कई गड़बड़ियों का पता चला है। जजों ने सेजल्स को युद्ध अपराधों के सभी 9 आरोपों से मुक्त कर दिया था। फिजी में साइक्लोन जेना के आने से पहले 6,000 से ज़्यादा लोगों को आपातकालीन शिविरों में भेज दिया गया है। फरवरी में साइक्लोन विंस्टन की वजह से 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। अमरीकी फार्मा कंपनी फाइजर ने US ट्रेजरी की ओर से टैक्स गड़बड़ी का पता लगने के बाद 160 अरब डॉलर की लागत से दूसरी कंपनी के साथ विलय की अपनी योजना त्याग दी है। फाइजर की योजना आयरलैंड में मौजूद एलर्गेन के साथ मर्जर की थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि समाचारों में अभी अभी आपने अजय शर्मा से सुना, श्रीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं फहराने देने से उत्तेजित छात्रों पर कल हुए पुलिस के लाठीचार्ज के बाद इंस्टीट्यूट में स्थिति तनावपूर्ण तो है लेकिन शांति बनी हुई है। छात्रों की आपस में भिड़ंत के बाद से पुलिस ने भीड़ पर हिंसा का केस दर्ज किया है। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दो अधिकारियों ने आज परिसर का दौरा किया। इन अधिकारियों ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि हालात सामान्य हैं और उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में छात्रों के बीच मुठभेड़ की समस्या मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के लिए भी अग्नि परीक्षा बन गई है। इंस्टीट्यूट के सैकड़ों छात्रों ने परिसर में मंदिर का निर्माण, गेट पर राष्ट्रीय ध्वज लहराने और स्थानीय अध्यापकों को छुट्टी पर भेजने की मांग की है। मांगे न पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की धमकी भी दी है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कहा है कि वो छात्रों की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध करे। NIT में इन दिनों आजकल परीक्षाओं का समय है और 13 तारीख से कुछ परीक्षाएं होनी हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के शपथ ग्रहण के दूसरे दिन कश्मीर के NIT में विद्यार्थियों का आंदोलन नई सरकार के लिए पहले चैलेंज के रूप में उभरा है। NIT के अधिकतम छात्रों का आरोप है कि पुलिस और स्थानीय छात्रों ने इनके साथ ज्यादती की है। अब छात्रों का कहना है कि वो पुलिस पर भरोसा नहीं करते, इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए CRPF को नियुक्त किया जाए।
इंडिया के हारने के बाद जो लोकल यहाँ के लोग हैं उन्होंने भारत के टुकड़े होंगे और ये सारे नारे लगाने शुरू किए, तो यहाँ के लड़कों ने भी रिटेलिएट करके भारत माता की जय, भारत माता की जय बोला और वो वहां से पाकिस्तान जिंदाबाद का झंडा बोलते रहे। इतने में सर बाहर कैंपस के बाहर से पत्थर आना शुरू हो गया, कैंपस के बाहर से पत्थर आना शुरू हुआ, कुछ लड़कों का सर फूट गया हॉस्टल। और सर इससे क्या हुआ कि पुलिस को मौका मिल गया, उन्होंने हम पर लाठी चार्ज कर दिया सर।
भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों का कहना है कि कैंपस में राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाए, एक मंदिर का निर्माण किया जाए और स्थानीय फैकल्टी के विरुद्ध एक्शन लिया जाए। दूसरी तरफ स्थानीय विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें लगता है कि इस मामले का राजनीतिकरण हो रहा है।
वहाँ उस साइड से भी बाहर के लोगों में से बहुत सारों को लगी एंड कश्मीर लोगों में से बहुत सारों को लगी, लेकिन हाईलाइट सिर्फ बाहर के लड़कों का हुआ क्योंकि उनके पास नेशनल मीडिया का सपोर्ट भी है एंड इस टाइम गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। डिमांड्स सब इन लोग की, हम बस ये चाहते हैं कि कॉलेज अब पीसफुली चले, हमारी क्लासेस कंटिन्यू हो, हमारे लेक्चर्स टाइम पे हो, हमारे एग्जाम्स टाइम पे हो, प्लस जो ये मतलब अनऑफिशियल डिमांड्स करें जैसे कि ये तिरंगा लहराना या यहाँ पे मंदिर का बनना या प्लस जो ये बोले CRPF कैंप, वो तो बकवास डिमांड्स है, हमारे सबसे पॉलिटिकली भी राइट नहीं है।
भारतीय गृह मंत्री ने पहले ही मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को फोन करके इस मामले पर चिंता जताई है और इनसे कहा है कि छात्रों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस बीच संजीव शर्मा के नेतृत्व में भारतीय मानव संसाधन मंत्रालय के दो अधिकारियों की टीम ने NIT का दौरा किया और छात्रों को सुरक्षा और शांति का आश्वासन दिलाया। उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह का कहना है कि कैंपस में शांति बहाल हो गई है।
शाम को ये कुछ घटना हुई है जिसके कारण के कुछ स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते थे, जिसको पुलिस ने रोका और पुलिस के रोकने के कारण जो है वहाँ लाठीचार्ज हुआ है, तो जरूर कुछ जख्मी हुए हैं। इससे लोगों में और खासकर पेरेंट्स को काफी परेशान है, मेरे पास भी कुछ पेरेंट्स आए थे, तो हमने DG से बात की, एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा बात किया है और अभी बिल्कुल शांति है और CM साहिबा भी पूरा नजर रखे हुए हैं। हमने डायरेक्ट किया है पुलिस को कि दो कंपनी अभी CRPF की वहाँ डिप्लॉय हो चुकी हैं और SP जो है वहाँ कैंप किए हुए है और पूरा शांति है।
NIT विवाद पर महबूबा मुफ्ती को अपोजिशन की आलोचना का भी सामना है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि गृह मंत्रालय और HRD मिनिस्ट्री का इस मामले में सीधा हस्तक्षेप ये साबित करता है कि केंद्र सरकार को महबूबा मुफ्ती पर कितना विश्वास है। विधायक इंजीनियर रशीद ने भी NIT मामले के राजनीतिकरण पर अपनी प्रतिक्रिया यूं जताई।
इन जवानों को कि आप यहां पर हिंदुस्तान का नेशनलिज्म NIT और कश्मीर में डिस्प्ले करें, जिससे वो खुद ये साबित कर रहे हैं कि कश्मीर की सड़कों पे शायद बदकिस्मती से कश्मीरी हिंदुस्तान जिंदाबाद या भारत माता की जय कहने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए गैर रियासी बाशिंदों को यहां पर अब हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाने पड़ते हैं। यह हिंदुस्तान की हार है, जीत नहीं, बजाय इसके कि वो इस बात का जश्न मनाएं कि NIT में कोई तिरंगा झंडा लहराता है, वो इस सवाल का जवाब दें कि कश्मीरी तिरंगा झंडा लहराने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है।
गौरतलब है पिछले महीने T20 सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद छात्रों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद क्लास वर्क रोक दिया गया था, लेकिन कल शाम को आउटस्टेशन छात्रों ने प्रदर्शन किया जिसके दौरान पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हो गई। इंस्टीट्यूट में 1500 से अधिक गैर कश्मीरी छात्र हैं जबकि स्थानीय विद्यार्थियों की संख्या 300 तक है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
तो जैसा कि आपने सुना कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने को लेकर जो विवाद पैदा हुआ था, तो आज उसकी स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन शांति बनी हुई है। इस इंस्टीट्यूट के परिसर को देखने के लिए हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर पहुंचे।
हम श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बाहर खड़े हैं और यहाँ बाहर इंस्टीट्यूट के गेट के बाहर काफी सुरक्षा कर्मी जो है तैनात किए गए हैं और कैंपस के अंदर भी राइट कंट्रोल गाड़ियां हैं, जगह जगह पे जो है वहाँ पे भी जो है सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। किसी को अंदर जाने की, खासकर मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। माहौल दिख रहा है कैंपस के अंदर को काफ़ी तनाव नज़र आ रहा है कि कैंपस में काफ़ी तनाव है, एक सन्नाटा है अंदर कैंपस के अंदर। इस तरह से
फिर दोबारा जो है स्टेज ही कैंपस के अंदर काफी गंभीर हो गई।
नाम जान सकते हैं ना आपका?
नाम को क्या करना भैया, इंडिया मैच हार गया तो जो लोकल स्टूडेंट्स थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे, बस जो नॉन लोकल थे उनको गुस्सा आ गया तो लड़ाई वगैरह हो गई तो पत्थर वगैरह फेंके उस कारण।
तो क्या ये सही है कि जैसे कि कश्मीरी स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें मारा और पीटा गया वहाँ अंदर कैंपस में नॉन कश्मीरी स्टूडेंट्स ने, तो क्या ये सही है? और वो कह रहे हैं कि हमें पीटा गया, कश्मीरी स्टूडेंट्स ने हमें पीटा,
उनसे पीटा नहीं होगा, दोनों की आपस में लड़ाई हाथापाई हो सकता हुई हो, एक दूसरे को मारा होगा दोनों ने।
अच्छा इतना हुआ, तो अभी जो है कल से क्या स्थिति है पूरे कैंपस में?
ठीक है, कल क्लासेस हुई थी, आज थोड़ी कम हुई है।
अच्छा,
अंदर थोड़ा टेंशन है।
अच्छा, एज अ स्टूडेंट आप जो कश्मीरी छात्र हैं उनसे आपको डर लग रहा है क्या?
नहीं, किसी बात का नहीं डर, वो तो ठीक है, उनके साथ रिलेशंस ठीक ही है।
हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर आज पहुंचे थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाके का दौरा कर रहे थे और वहां पर उन्होंने एक छात्र से भी बात की।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। दुनिया में 42 करोड़ लोगों को डायबिटीज यानी कि मधुमेह की बीमारी है और इनमें से 10 करोड़ लोग अकेले भारत में रहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी किए गए इन ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले दशकों में डायबिटीज यानी कि मधुमेह से पीड़ित लोगों की तादाद विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों में तेजी से बढ़ी है। दिव्या आर्य ने इस पूरी रिपोर्ट पर नजर रखी है, तो दिव्या सबसे पहले तो यही बताएं कि जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें कहा क्या गया है।
सबसे अहम बात जो इस रिपोर्ट से निकल के आई है वो ये कि डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में बढ़ा है। 1980 में 10 करोड़ वयस्क लोगों को डायबिटीज़ पाई गई थी और अब 34 साल बाद 2014 का जो इन्होंने दूसरा आंकड़ा लिया है उसमें ये 4 गुना बढ़कर 42 करोड़ से ज़्यादा हो गया है।
यानी कि आज की तारीख से ये 2 साल पहले की बात है, 2014 की बात है।
हाँ, क्योंकि वो पूरा उन्होंने पूरी दुनिया के हर देश से ये आंकड़ा लिया, तो जाहिर है उसको कलेक्ट करके एक टेबल में जमाने में ही इतना समय उन्हें लग गया। दूसरी बात, अगर आप इसे दर के तौर पे देखें यानी पूरी दुनिया के करीब 5% लोगों को डायबिटीज़ पाई गई थी 1980 में, 34 साल बाद ये दुगनी हो गई है यानी पूरी दुनिया के करीब 9% लोगों को इस वक्त डायबिटीज़ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े आंकड़े हैं और WHO के मुताबिक इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मोटापा, ओबिसिटी, लोगों का ओवरवेट होना।
इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दुनिया का जो हर चौथा डायबिटिक है वो हिंदुस्तानी है। अगर हम इसको भौगोलिक नजरिए से देखें तो जरा बताएं कि किन किन देशों में किस तरह से बीमारी फैली है।
जैसे कि सबसे ज्यादा आबादी चीन और भारत में है, तो ये भी सामने आया है कि इन्हीं दो इलाकों में यानी दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें भारत आता है, बड़ा हिस्सा भारत का है, और पश्चिमी प्रशांत देश जिसमें एक बड़ा हिस्सा चीन का है, इन दो इलाकों में सबसे ज्यादा डायबिटिक है, बल्कि आधे डायबिटिक इन्हीं दो इलाकों में हैं। और ये भी पाया गया है कि पिछले दशकों में पहले माना जाता था कि जो धनाढ्य देश हैं जहां ज्यादा आमदनी है, ज्यादा धन है, वहीं की ये बीमारी है, रईसों की बीमारी है। लेकिन ये अब जैसे मैं आपको दो क्षेत्र भी बता रही हूँ, ये विकासशील देश, यहाँ पर अभी भारत विकासशील देश ही माना जाता है, तो विकासशील देशों में ब्रिक्स की जो हम बात करें उनमें ये ज्यादा तेजी से बीमारी बढ़ी है।
अच्छा, इसमें उम्र की कोई परिभाषा तय की गई है? उम्र के बारे में कुछ बताइए कि किस उम्र के लोग इससे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं।
वैसे तो डायबिटीज़ को बढ़ती उम्र के साथ ही हमेशा से जोड़ा गया है और आप 50-60 उम्र का जो ये ब्रैकेट है इसमें सबसे ज़्यादा इसकी दर पाई जाती है। और अगर हम मृत्यु दर भी देखें तो 70 के बाद आधे से ज़्यादा लोग जो डायबिटीज़ से जिनकी मौत होती है वो 70 से ज़्यादा है। लेकिन अब ये पाया गया है कि ये दरअसल बहुत कम उम्र के लोगों में भी इसका दर बढ़ने लगी है, बल्कि 43% लोग जो डायबिटीज़ से जिनकी मौत होती है उनकी उम्र 70 से कम ही है और 20 साल की उम्र के लोगों में भी अब डायबिटीज़ होने लगा है।
कितना खर्चा किया जाता है इस समस्या और इसके निदान के लिए?
मोहनलाल जी, अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। $827 अरब से भी ज़्यादा खर्च है जो सीधा डायबिटीज़ की वजह से पूरी दुनिया पर ये बोझ पड़ रहा है। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि आप सोचेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि बीमारी का दर बढ़ रही है, बीमारी की दर तो बढ़ी ही है पिछले दशकों में, पर क्योंकि इससे निदान पाने के जो इलाज हैं वो भी बढ़े हैं, इस वजह से भी ये खर्च बढ़ा है। तो शायद इसमें कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी।
दिव्या आर्य बता रही थी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें डायबिटीज को लेकर क्या बातें कही गई हैं।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
अंतर्राष्ट्रीय खबर। पनामा पेपर लीक मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपने परिवार की टैक्स संबंधी ब्यूरों के संबंध में आज फिर से सफाई दी और कहा कि इससे उनका कोई वास्ता नहीं है। कैमरन के पिता का नाम पनामा पेपर लीक में सामने आया था। वहीं पनामा की कंपनी मोसाक फोनसेका ने आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है कि विदेशों से उसके कंप्यूटर को हैक किया गया। इन सबके बीच खबर यह है कि आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने इनकार किया है कि उन्होंने कल इस्तीफा दिया था। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अमर शर्मा से।
पनामा की कानूनी फर्म मोसाक फोनसेका से लीक हुए दस्तावेजों के मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपने परिवार के टैक्स ब्यौरों के संबंध में आज फिर से सफाई दी है। कैमरन के प्रवक्ता ने कहा है कि विदेशों में स्थित ट्रस्ट या निवेश कोष से प्रधानमंत्री के परिवार को भविष्य में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। लंदन स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट से जारी बयान में कल भी कहा गया था कि कैमरन का इनसे कोई वास्ता नहीं। पनामा पेपर्स में ये सामने आया था कि कैमरन के पिता इयन कैमरन ने एक विदेशी फंड को चलाने में मदद की थी और कंपनी मोसाक फोनसेका के एक ग्राहक थे। लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कल मांग की थी कि जिनका भी नाम टैक्स बचाने के पनाहगाहों से जुड़ा पाया गया है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के परिवार समेत उन सभी ब्रिटिश नागरिकों की स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए। लेबर पार्टी का कहना है कि सवाल अब भी बरकरार है और कैमरन को अपने टैक्स रिटर्न सार्वजनिक करने चाहिए। मोसाक फोनसेका के इन 1,10,00,000 गोपनीय दस्तावेजों को जर्मन अखबार जुडॉयच साइटूंग ने हासिल किया। वहीं कंपनी मोसाक फोनसेका के सह संस्थापक रेमन फोनसेका ने कहा है कि दस्तावेजों को लीक करना किसी बाहरी व्यक्ति का काम है। रेमन ने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है कि विदेशों से उनके कंप्यूटर को हैक किया गया।
अब नई खबर होगी कि हैकिंग के मामले की जांच कौन कर रहा है। हमें आश्चर्य हो रहा है कि किसी ने नहीं कहा कि यहाँ एक अपराध हुआ है। पेपर लीक होने के बारे में पनामा के अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में शिकायत दर्ज करा दी गई है। आधिकारिक तौर पर इस मसले को देखा जा रहा है और हमारी मदद की जा रही है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी हमारी मदद कर रहे हैं।
रेमन फोनसेका के शब्द। इन गोपनीय दस्तावेजों को जर्मन अखबार ने कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ के साथ साझा किया। इसके बाद दुनिया भर की सरकारों ने वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका में जांच शुरू कर दी है। फ्रांस ने घोषणा की है कि वो टैक्स बचाने वाले पनाहगाहों की काली सूची में पनामा को दोबारा डालेंगे। फ्रांस के वित्त मंत्री मिशेल सेपिन ने संसद में कहा कि जो खबरें सामने आई हैं, पनामा को उनके परिणाम भुगतने होंगे।
पनामा वो देश है जो चाहता था कि हम ये माने कि वे वृहद अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का सम्मान कर सकते हैं। वे चाहते थे कि हम इस बात पर यकीन करें और इस तरह टैक्स पनाहगाहों की काली सूची से अपना नाम हटवाने में वो सफल रहे। अब आगे ये मुमकिन नहीं। फ्रांस ने तय कर लिया है कि सहयोग नहीं करने वाले देशों की उस सूची में पनामा को दोबारा डाला जाएगा। इसका उन लोगों पर असर पड़ेगा जिनका पनामा से किसी भी तरह का लेन देन है।
मिशेल सेपिन के शब्द। पनामा के लीक हुए दस्तावेजों में नाम आने के बाद कल ये खबर आई कि आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिगमंडर गुनलॉन्गसन ने विरोध प्रदर्शनों और विपक्ष की मांग के बाद इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आज उन्होंने इस खबर का खंडन किया। आज उनके प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा है कि वास्तव में प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि उप प्रमुख को अनिश्चितकालीन समय के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी हैं।
पनामा पेपर लीक मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने फिर से सफाई दी। म्यांमार ने आंग सान सूची को कंधे पर बैठाकर सैन्य शासन से लोकतंत्र तक का रास्ता तय करने का सपना देखा था। वो सपना चुनावों में NLD की जीत के साथ बहुत हद तक हासिल तो हुआ, लेकिन सूची और सेना के बीच की रस्साकशी अभी भी एक बड़ी बाधा है। सूची की भूमिका के लिए निश्चित और प्रभावशाली जगह न बना पाने से देश में और बाहर भी लोगों का मन आशंकित हो चला है। निखिल रंजन से दुनिया जहां में इसी पर बात करते हैं।
दुनिया जहान।
साल 2010 के नवंबर में शनिवार की वो एक आम सुबह थी, लेकिन म्यांमार में लोकतंत्र की आवाज आंग सान सूची की नजरबंदी से रिहाई का फरमान इसे ऐतिहासिक बना गया। शहर में दर्जनों जगह जुंटा के बैरियर लगाने के बावजूद हजारों लोग सूची के घर के बाहर जमा हो गए तो वो पतली सी काया घर के बाहर निकली। दशक भर से ज्यादा की कैद का असर ना तो तन पर था ना मन पर। शोर बुलंद हुआ, सू वी लव यू। तब इस शोर शराबे के बीच ही सूची ने कहा था, चुप रहने का एक वक्त होता है और बोलने का एक। लोगों को मिलकर काम करना होगा, तभी हमारे मकसद पूरे होंगे। सूची और उनके समर्थकों के मिलकर काम करने का नतीजा आ गया है। देश के शासन की चाबी अब उनके हाथों में है। बावजूद इसके ना तो वो मकसद पूरा हुआ, ना चुनौतियां खत्म हुई, लेकिन उनकी आवाज जरूर गूंजने लगी है। म्यांमार में भारत के पूर्व राजदूत राकेश सूद।
जो पब्लिक फेस है इस वक्त चेंज का म्यांमार में, वो आंग सान सू ची का। तो इसलिए लाजमी बात है कि ये चेंज जो है ये बहुत धीरे धीरे आया है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं मिलिट्री रूल 1962 में लागू किया गया था, तो बहुत अरसा हो गया। अब वो जो चेंज आया है धीरे धीरे पिछले 4-5-6 साल के अंदर, उस चेंज को आंग सान सू ची थोड़ा एक्सेलरेट करना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरह से एक मोमेंटम जो है वो उसको पकड़ना चाहती हैं।
म्यांमार की संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत हासिल करने के बाद भी सूची के सामने चुनौतियों की लंबी कतार है। कई दशकों से देश की सत्ता पर काबिज सैनिक शासन अपनी मुट्ठी एक झटके में खोलने को तैयार नहीं, और सूची को उन्हीं ताकतों से जूझना है जिन्होंने करीब 1.5 दशक तक उन्हें कैद में रखा। इतना जरूर है कि अब देश में कुछ और ताकतें भी उभर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद ICWA के रिसर्च फेलो राहुल मिश्रा।
लोकतंत्र तो आया है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD का रोल भी बहुत बड़ा है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स सामने आए हैं। तो आज सिर्फ ये कहा जाए कि मिलिट्री और NLD के बीच में बात है, ऐसा नहीं है। सिविल सोसाइटी का रोल बढ़ा है, माइनॉरिटी पार्टीज़ का रोल बढ़ा है। जहाँ तक मिलिट्री का सवाल है, मिलिट्री के हाथ में वो ट्रंप का इक्का है, जो कि वो जब भी प्ले करेंगे वो फेल नहीं होंगे। क्योंकि जो भी आप संविधान में संशोधन चाहते हैं, उसके लिए बेसिक चीज़ है कि आपको 75% वोट होने चाहिए प्लस वन सीट। तो अभी आंग सांग सूची के पास जीती हुई सीटों में 75% तो मिल सकता है, लेकिन प्लस वन के लिए उनको आर्मी, जो मिलिट्री की सीटें, तात्मदाओ की सीटें हैं, उसमें से एक फ्रैक्शन चाहिए। तो ये परिवर्तन तभी हो सकता है जब मिलिट्री के अंदर विभाजन हो, या ऐसे ही कुछ फ्रैक्शन बिकरिंग उनके बीच में आने लगे कि मिलिट्री के दो धड़े हो जाएं और एक उनमें से आंग सांग सूची को सपोर्ट करें।
सैनिक शासन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव के आगे झुककर सत्ता के गलियारों में सूची के लिए रास्ता तो बना दिया, लेकिन नियंत्रण अब भी उन्हीं का है। और सूची ने सैनिक शासकों को चुनौती तो जरूर दी है, लेकिन आमने सामने के टकराव जैसी बात नहीं।
इन्होंने आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी, उसकी जरूरत भी नहीं थी। 2011 में जो परिवर्तन हुआ, थेन सेन जो राष्ट्रपति बने, मिलिट्री ऑफिसर थे, और उसने खुद से ही बहुत सारी शक्तियाँ एक तरह से कहें कि लोकतांत्रिक ढंग में परिवर्तित कर दी। म्यांमार लोकतंत्र आंग सांग सूची की वजह से तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है, लेकिन मिलिट्री की खुद की इच्छा कि वो परिवर्तित हो और लोकतंत्र का समय आ गया है और इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, ये बहुत बड़ा रोल प्लेयर है। और इस वजह से मैं मानता हूँ कि आंग सांग सूची को शायद इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि वो एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आए। 2015 के नवंबर के चुनाव हुए, उसके बाद से आंग सांग सूची का जो रोल हम देखें, उसमें दो चीज़ें उनको बहुत क्लियर थी। पहली चीज़ कि 25% सीटें मिलिट्री के पास है, तो उनसे लड़ के कुछ भी हासिल नहीं होगा, आपको उनके साथ कहीं ना कहीं मिल करके बैठ करके बात करनी होगी।
अब ये चाहे सूची की मजबूरी हो या नीति, लेकिन चुनाव जीतने के बाद के महीनों में जब उनके राष्ट्रपति बनने की संभावनाओं पर विराम लगने लगा, तो उन्होंने सैन्य नेताओं से मोलभाव शुरू किया। सूची ने अपने विश्वसनीय और स्कूली दोस्त तिनच्या को राष्ट्रपति पद पर काबिज तो करवा दिया, लेकिन खुद के लिए सही भूमिका की तलाश उन्हें नए नए प्रयोगों के लिए उकसा रही है। राकेश सूद।
आप इसको उस पार्टी की ताकत कह लीजिए या उस पार्टी की कमजोरी कह लीजिए, पर एक अगर सिंबल है इस पार्टी का तो वो आंग सान सू ची। तो पार्टी के लिए भी और इस प्रोसेस, एक तरह से जो बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को आगे तक ले जाने के लिए भी आंग सान सू ची का सेंटर स्टेज रहना अनिवार्य है। संविधान में जो संशोधन किया गया, जिसके तहत अब वो स्टेट काउंसलर होंगी, जो एक नई किस्म की पदवी है जो बनाई गई, और वो फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन अफेयर्स का जिम्मेवारी लेंगी, या वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में एक मंत्री के रूप में होंगी। तो ये सारी चीजें ऐसे हैं कि एक तो एक्सटर्नल फेस जो बाहर की तरफ बात करने के लिए एक, और ये आर्मी के लिए भी मैं समझता हूँ अच्छा है, अगर आर्मी एंटेगनिस्टिक व्यू लेती है तो मुश्किल हो जाएगी, पर अगर वो उनको एक्सटर्नल फेस बनने का मौका देती है तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रांजिशन जो है वो आसान हो जाएगी आर्मी के लिए भी।
सूची की भारी लोकप्रियता अगर उनकी ताकत है तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी। सूची को अभी देश की अलग अलग जातीय और धार्मिक संप्रदायों की मुश्किलें भी सुननी हैं। पिछले दिनों मुसलमानों के बारे में उनके एक बयान की बड़ी आलोचना हुई। ये आलोचना इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि पड़ोसियों के साथ ही दूर दराज के देशों को भी बड़ी बेसब्री से सूची का इंतजार है।
उनकी विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा है, उनकी बातों को लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, दूसरे देश जो हैं वो इंगेज करने की कोशिश करेंगे। इसमें नेचुरली मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक देशों को थोड़ा फ़ायदा होगा, खास तौर पे भारत को, क्योंकि क्योंकि आंग सान सू ची भारत में पढ़ी हैं, उनका बहुत दिनों से एफिलिएशन रहा है इंडिया से। चीन के साथ मिलिट्री गवर्नमेंट के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे 2012 के बाद से, और आंग सान सू ची के भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, एनएलडी के भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। थाईलैंड ड्रग और नारकोटिक्स और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके मुद्दे पर थोड़ा सा परेशान रहेगा और थोड़ा परेशान करेगा भी, लेकिन सबसे चैलेंजिंग होगा रिश्ते यूएस के साथ मेंटेन करना, क्योंकि अमेरिकन्स ने हमेशा इस चीज़ पे दबाव डाला है कि रोहिंग्यास के साथ क्या करता है म्यांमार। और दूसरा, इन सारे मसलों की जड़ बांग्लादेश, जहाँ से रोहिंग्यास का माइग्रेशन हुआ है, और अभी भी लोग ये कहते हैं कि जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको बांग्लादेश वापस जाना चाहिए। तो बांग्लादेश म्यांमार के संबंध कैसे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी पे बेस्ड इस क्षेत्रीय जो सहयोग का मुद्दा है, चाहे वो इंडिया बांग्लादेश म्यांमार ऑयल पाइपलाइन हो या BCIM हो या इवन आसियान रिलेशनशिप है।
म्यांमार ने 5 दशकों से ज्यादा के वक्त में सिर्फ सैनिक शासन ही देखा है। आंग सान सू ची उसे लोकतंत्र के उजाले से रोशन करना चाहती हैं, लेकिन चुनाव जीतने भर से ये नहीं होगा इसका अंदाजा तो उन्हें हो ही गया होगा। निखिल रंजन, BBC दिल्ली।
यहीं पर आपको बता दें कि म्यांमार पर निखिल रंजन का ये दुनिया जहां कार्यक्रम आप सुबह दूसरी सभा में फिर से सुन सकते हैं। और अब कार्यक्रम में बात करेंगे खेल समाचारों की। रजत चांदना मौजूद है, रजत बताएं।
जी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने IPL के मुंबई में होने वाले मैच को लेकर इस पे महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि ये मैच वहाँ कराना चाहिए जहाँ ज़्यादा पानी है। सूखे के बावजूद पानी की बर्बादी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि IPL ज़्यादा अहम है या पानी। सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में पानी की बर्बादी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि IPL के मैच ऐसी जगह होने चाहिए जहां जल संकट नहीं हो। अदालत ने कहा है कि सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कदम उठाएं, और इस पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। मोहल्ला
और उसके बाद ये तय होगा कि भाई वहां पर ये जो मामला है आगे क्या बढ़ता है। और दूसरी क्या खबरें हैं खेल की?
जी, सबसे बड़ी खबर खेल में है, 25वें सुल्तान असलान शाह कप में भारत ने जीत से अपनी शुरुआत की। भारत ने 2-1 से जापान को मात दी।
काफी अच्छा प्रदर्शन रहा इंडियन टीम का, और इसी के साथ इंडियन टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप का अपना पहला आउटिंग जीत लिया है जापान टीम के विरुद्ध 1-2 से भारतीय हॉकी टीम की जीत।
जी हाँ, मैच में 18वें मिनट में जापान ने पेनल्टी कॉर्नर से पहला गोल कर बढ़त बनाई, लेकिन उसके बाद हाफ टाइम में हरमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए एक और पेनल्टी कॉर्नर का फायदा उठाया और मैच में भारत को बराबरी पर ले आए। उसके बाद कप्तान सरदार सिंह ने 36वें मिनट में एक शानदार रिवर्स फ्लिक के जरिए भारत को मैच में 2-1 से बढ़त दिलाई। भारत 5 बार ये खिताब जीत चुका है और कल अगले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी भारतीय टीम।
बहुत बहुत शुक्रिया रजत चांदना। और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
BBC समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर के श्रीनगर में मौजूद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हालात शांत हैं पर तनाव बना हुआ है। जम्मू में आज वकीलों ने हड़ताल की और कल श्रीराम सेना ने जम्मू में बंद का आह्वान किया है। पनामा पेपर्स लीक होने के बाद फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो पनामा को फिर से ब्लैकलिस्ट में रखेगा। शरणार्थी संकट देखते हुए यूरोपियन यूनियन आप्रवासन के नियमों में सुधार के प्रस्तावों पर विचार कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया में डायबिटीज़ रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है और दुनिया का हर 11वें में से एक व्यक्ति इससे प्रभावित है। भारत में हुए वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट में कामयाबी के बाद ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च क्रिकेट खिलाड़ियों की तनख्वाहें पढ़ाई जा रही हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।